ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। अमरीकी सरकार द्वारा संभावित शुल्क राहत के संकेत के बाद भारतीय शेयर बाजार आज 2% से अधिक की उछाल के साथ खुले। सेंसेक्स 1689 अंक बढ़कर 76,836 पर खुला, जबकि निफ्टी 539 अंक की वृद्धि के साथ 23,368 पर खुला। वैश्विक बाजारों ने भी इन घटनाक्रमों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। सोमवार को एशियाई, यूरोपीय और अमरीकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से चयनित स्टार्टअप क्यूएनयू लैब्स ने कल विश्व क्वांटम दिवस पर दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड का शुभारंभ किया। ये उद्यमों को अपनी महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षित रखने में सशक्त बनाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि क्यू शील्ड कॉस्मॉस सुरक्षित कनेक्टिविटी के लिए क्यू कनेक्ट और सुरक्षित समन्वय के लिए क्यू वर्स जैसी विभिन्न सेवाओं की भी सुविधा देता है। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कल रात भीषण आग लगने पर 200 से अधिक रोगियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मरीजों का तुरंत उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक स्थिति का जायजा लेने कल रात ही घटनास्थल पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्य स्वास्थ्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि सभी रोगियों को अन्य अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है।
किसी के जान माल के खतरा नहीं है, किसी की कोई डेथ नहीं हुई है, किसी को कोई इंजरी नहीं है। आग को देखते ही तुरंत यहाँ एम्बुलेंसेस बड़ी मात्रा में बुला लिए गए थे। मैक्सिमम पेशेंट्स शिफ्ट हो चुके हैं। उन अस्पतालों के प्रबंधन से भी बात हो गई है कि उनका ध्यान रखेंगे और वो फायर पे कंट्रोल पा चुके हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने मुर्शिदाबाद में हुई घटना पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। राज्यपाल को लिखे पत्र में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजूमदार ने घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा देते हुए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वक्फ संशोधन अधिनियम पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुश्री बनर्जी का पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लागू न किए जाने वाला बयान संविधान के विरुद्ध है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कल शाम हैदराबाद में भू भारती राजस्व पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल का उद्देश्य राज्य में भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाना है। इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भू भारती पोर्टल विवाद मुक्त राजस्व नीति के माध्यम से भूमि से जुड़े मुद्दों को स्थायी समाधान करेगा। श्री रेड्डी ने कहा कि भूमि मालिकों को भूधर कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें जमीन से संबंधित सभी जानकारी होगी। हिमाचल प्रदेश आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर राज्य का गठन किया गया था। इस वर्ष स्थापना दिवस समारोह चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी के मुख्यालय किल्लार में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध विरासत से जुड़े कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत का दूसरा दौर शनिवार को रोम में होने की संभावना है। इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो ताजानी ने घोषणा की है कि दोनों पक्षों और ओमान के आग्रह के बाद इटली बातचीत की मेजबानी पर तैयार हुआ है। ओमान इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। श्री ताजानी ने जापान की यात्रा के दौरान ये जानकारी दी। अमरीका और ईरान के बीच बातचीत का पहला दौर 12 अप्रैल को ओमान में हुआ था। दोनों देशों ने बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगला नववर्ष पोइला बैशाख की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस नए वर्ष में हर किसी की इच्छा पूरी होने की मंगल कामना की। उन्होंने सबके लिए सुख, समृद्धि, सफलता और स्वास्थ्य की भी प्रार्थना की। आईपीएल टी20 क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर लगातार 5 मैचों में अपनी हार का सिलसिला खत्म कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन बनाए। इसके जवाब में चेन्नई ने 20वें ओवर में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। उड़ीसा में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।